है कि जब कोई पूर्ण महात्मा मिल जाए आप अपना हृदय खाली करके उसके सामने रख दो और बाकी अपने आप सारा काम होगा। आपको पता है जब आपको उपदेश दिया जाता है तो यही कहा जाता है कि भाई निश्चिंत होकर बैठ जाओ, सब तरह से ख्याल रखाओ, हृदय को खाली करो, बाकी वो अपना आप काम करता। गुरबानी में आता है काल न मिलो, सेव न मिलो, काल न मिलो, मिलो आए अचिंता। वो सेवने से घालने से वो नहीं मिलता है। जब आप अचिंत हालत में हो उस वक्त वो अपने आप आ जाता है। आप देखिए एक दरवाजे में आप खड़े, आप बुला रहे, आओ भाई, आओ मित्र, आओ मेरे दोस्त, अंदर आ जा, आप दरवाजा ही छोड़ते नहीं, कैसे अंतर में आए। इसका मतलब है प्रेयर करके उसके दर पर बैठ जाओ, बाकी आप किनारे हो जाओ, उसके हवाले कर दो, बाकी सारा काम उसी का। कहते मेरा हृदय खाली करके मैंने पेश किया, उसमें वो बैठ गए, अब जब जहाँ देखते हो उसी को देखते हो। पहाड़ों की चोटी पर इनकी एक चिट्ठी आई थी कि मैं 14,000 या 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फों पर खड़ा हूँ। इनको पहले विश्वास नहीं था कि गुरु पावर जो है गुरु स्वरूप प्रकट होता है, तो ये बार बार इसको समझाते थे कि भाई ये नहीं हो सकता। तो इन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं इस वक्त 15,000 फुट की बुलंदी पर बैठा हूँ, बर्फों पर खड़ा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ मेरा गुरु स्वरूप सामने है लाइट में खड़ा। कहते अब मैं कन्विंस हूँ। तो ऐसे ही कहते जैसे मुझे ये गति मिली है आप लोगों को मिल सकती। हृदय खाली करो। हृदय खाली कैसे होगा कि सिवाय उसके और कोई न रहे। जो हृदय खाली होगा वो भरा जाएगा। जो आगे प्याला भरा पड़ा है उसमें और क्या पड़ सकता। और रिसेप्टिव बनो, हमेशा सुराही के नीचे जो प्याला होगा वो भर जाएगा, जो सुराही के ऊपर होगा खाली रह जाएगा। खैर कल शाम आज सो आपके सामने मज़मून रखा गया था हजूर की लाइफ की थोड़ी थोड़ी टचेस देकर कि सत्संगी हम कैसे बन सकते। हम सत्संगी बनने के लिए महापुरुषों के पास जाते हैं, वो सच्चे मानों में सत का संग कर रहे हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने, समझे। हम उस सत के पाने के लिए उनके पास जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं वो क्या करते हैं, हमें थोड़ा सत का संग दे देते हैं, कॉन्टेक्ट। कैसे? उसका कॉन्टेक्ट ये संग किसको होता है? आत्मा को। इस वक्त हमारी क्या गति है? हम आत्मा देहधारी हैं, सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं, ये जिस्म का रूप बना बैठा है। जिस्म और तलका तो इंद्रियों के भगोर संग का ही सत्संग कर रहा। अब उस सत के संग, ये असत्संग है, वो है सत्संग। असत से हटे तब सत का संग को पाए। तो इसलिए जब महापुरुष मिलते हैं तो आपको सत के संग की थोड़ी पूंजी दे देते। सत क्या है? वो परमात्मा, बाकी सब असत है। जगत असत है और आत्मा सत है। आत्मा सत क्यों है? ये एक सब्सटेंस की बनी हुई है, कॉन्शियसनेस की। इसलिए जो एक चीज़ की बनी है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, अमर और अजर है, हमेशा अनचेंजेबल, परमानेंस और लातगैर है। बाकी मैटर, जिस्म और इसके जितने बाहरी जगत और जिस्म सारे मैटर के बने हुए हैं, ये हैं कम्बिनेशन एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स आगे हैं एटम्स के बने हुए, इसलिए डिसइंटीग्रेट होंगे। तो सत का संग पाने के लिए मनुष्य उन सबसे हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन है, जहाँ मनुष्य जीवन में ही पाकर तुम उस सत के संग को पा सकते हो। उस सत के संग के पाने के लिए हमें क्या करना होगा, कल आपके सामने डिटेल में रखा गया था, सत्संगी कैसे बन सकते हो। पहले ज़मानों में तो ये किया जाता था कि तैयार करके 10-10, 12-12 साल कई कई साल बर्तन बनाकर कुछ डाला करते थे। आकर घोर कलयुग है, संतों ने देखा ना वो जमाने रहे ना वो हालात रहे। अरे वो क्या करते हैं, स्कूल में दाखिल कर लेते हैं, दोनों काम लेते हैं, एक तो बनाने का, दूसरा सत के संग के पाने का। पूंजी पहले दे देते हैं। वो पूंजी क्या है? वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। वो परमात्मा अनहद की धुनी कहो, उदो गीत कहो, नाद कहो, लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल है, उसकी थोड़ी पूंजी देती है। वो किस चीज़ का इजहार है? वो उसी शब्द कहो, परमात्मा इजहार में आई ताकत कहो, उसका कॉन्टेक्ट है, वही अव्वल है। सारी सृष्टि का आगाज उसी से हुआ, अब भी उसी आधार पर चल रही है, और अंतम आखिर क्या होगा, वही शब्द ही रह जाएगा, उत्पत्ति प्रलय शब्द होवे, शब्द ही फिर उत्पत्ति होवे। उत्पत्ति और प्रलय जिस ताकत के आधार पर होती है, जिस ताकत के आधार पर प्रलय होकर दोबारा नए सिरे से सृष्टि का आगाज होता है, उसका नाम है शब्द, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। शुरू दुनिया का भी उसी से हुआ, अब भी उसी से आधार चल रही, आखिर रह क्या जाएगा, वही शब्द। शब्द के दो एक्सप्रेशन हैं, एक है अशब्द जो अभी इजहार में नहीं आया था, उसके पहुंचने की जो इनटू एक्सप्रेशन पावर, ज्योति का विकास और ध्वनि, ये दो चीज़ें हैं जिसकी आत्मा मनुष्य जीवन पाकर उसके साथ लागकर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो गई, उसको न परले है न महापर्व। स्वामी जी ने थोड़ा हिंट दिया था कि शुरू भी इसी से हुआ सिलसिला, अब भी मनुष्य जीवन पाकर महात्मा हमें उसी के साथ जोड़ते, जी को मामूली बात नहीं, सबको ये नहीं दे सकता, ये भागों से मिलता है। मैंने आज सुबह आपको जिक्र किया था कि तीन कृपा चाहिए, पहली कृपा उस प्रभु की जिस जीव को मिलाना चाहे, जब वो कृपा करता है तो किसी मिले को मिला देता, वो क्या करता है जिसके अंतर वो कंटैक्ट कर रहा है, माउथ पीस बन रहा है जो इंसान, उसको साथ जोड़ देता है, वो उसको उसके साथ जोड़ देता। तो नाम का मिलना को मामूली बात नहीं, ये हमने बड़ा मामूली बात, चलो नाम ले लो ख़त्म हो गया, अरे नाम लेकर खाली ख़त्म नहीं हो गया, अभी अलभ्य शुरू हुई है हमारी। ये कहाँ से शुरू होती है, जब आप अदृष्ट और गोचर लेवल पर जाते हो, एवड ऊंचा होए को तिस ऊंचे को जाने दो, तो पहले दिन किसी महापुरुष का मिलना ये उसकी बरकत से, फिर उसकी कृपा करके हमको कुछ पूंजी दे देना, किसकी, उसी नाम की या शब्द की जो ज्योति स्वरूप का इजहार है उसमें, और जिससे शब्द का ध्वनि हो रही है, उसकी कॉन्टेक्ट देने से जो आत्मा मन इंद्रियों से आज़ाद होकर उसमें लय होने लग गई, आखिर जिंदगी की ये एवोल्यूशन जो, और ये कहाँ ख़त्म होगी, फिर शब्द और लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल में, उसी शब्द में, फिर अशब्द में लय हो सकती है, फिर उसी के आधार पर सृष्टि का आगाज हो सकता है। ये बड़ा एक समझने वाली बात है, नाम का मिलना मामूली बात नहीं, ये हर किसी को नहीं मिलता, बड़े भागों से मिलता है। तुर कर्म पाया तुद जिनको उसे नाम हर के लागे, कहे नानक तय सुख हुआ तित कर आन हर वाजे, जिसको दूर से आप दया करें। मर ये कहाँ से मिलता है, तो बड़े प्यार से समझाया कि जिसको तू आप दया करे उसको मिलता है, फिर कहाँ से, लेकिन जहाँ नाम मिले तो जाओ, नाम जपत कोट सूर उजारा, नाम जपते करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। फिर कहा राम नाम कीर्तन हो रहा, दोनों पे जाए शब्द निशान, तो लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, ज्योति का विकास, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग, दैट्स ए वे बैक टू गॉड। कहाँ से उसका ABC अलग वे शुरू, जब आप इंदु के घाट से ऊपर आओ। इंदु के घाट से ऊपर कैसे आ सकते हो, इसके लिए जो जाते हैं वो आपको वे अप करेंगे, खेचे सदगुरु बलवान, और उसकी थोड़ी पूंजी दे देने से, उसका रोज रोज अभ्यास करने से तुम उसके शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाओगे, तुम्हें परले और महापरले का कोई डर नहीं है। तो नाम का मिलना मामूली बात नहीं, अपना उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने जंग मद्रास करना मंदिरों में फिरते रहे, पहाड़ों की चोटियों पर गए, बर्फानी गुफाओं में रहे, दरियाओं के तटों पर उम्रें गुजार दी, मर चीज़ कब मिली, कलकत्ते में जाकर वहाँ मिले चीज देना, जो इंदा या बिंदा आखिर मिला। तो आप लोगों को ये उन्होंने समझाया है कि भाई तुम भागों वाले हो, पूंजी तो तुम मिलती ही, पूंजी रख कर ना करना निहायत बदकिस्मत। जिनको ये चीज़ अभी नहीं मिली, और इस चीज़ के देने वाले भी कहीं कहीं मिलेंगे, एक या दो, ज़्यादा जितने हों खुशी की बात है, मगर ऐसे महापुरुष कम मिलते हैं। कहते जहाँ नाम मिले थे जाओ, पूजा कहाँ से ले कि जहाँ ये चीज़ मिल सकती है ले लो। फिर कहते कैसे मिलेंगी, फरमाते हैं गुरु प्रसादी कर्म को, गुरु कृपा से। मगर ऐसे गुरु कामयाब आगे भी थे, अब भी कामयाब, तो बड़े भागों से ये चीज़ पूंजी मिलती है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे हैं। आपको वो चीज़ जिनको मिल चुकी है और मिल चुकने पर भी उसकी कदर नहीं कर रहे हैं, क्या उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अरे अपने जीवन और मत का वो पथ है, आधार है, जो उसके साथ दूर लग गई उसको पढ़ने महापढ़ने का क्या फिक्र। मुझे बस से चिट्ठी आई, कह रहे महाराज यहाँ तो बड़ी अमेरिका सब अंडर वाटर हो जाएगा, हम क्या करेंगे। मैंने उनको लिखा भाई तुमको नाम मिल चुका है, तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारी संभाल करेगा। आखिर नाम में ही हमने निष्ठ होना है, नाम निष्ठ और शब्द निष्ठ एक ही बात है, शब्द श्रोत्री बनो, शब्द निष्ठ बनो। जिसको ये पूंजी मिल गई और उसको आखिर दुनिया की जो कहती है परले महापाल होकर अगर उसी में लें, इजहार की ताकत है ना, वही सबका आधार है, उसी में आपको आज पहले ही महापुरुष पहले दिन थोड़ा उसका पूंजी दे देते हैं, बड़ी भारी बरकत है, मगर अफसोस हम कदर नहीं करते, ये बड़े भागों से मिलती है। तो कल आपके सामने ये रखा गया था कि सत्संगी, सत के संग करने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए थे, सत के संग करने के लिए हम महापुरुषों के चरणों में गए, जिनको सत का संग आप ही नसीब नहीं, आपको कहाँ से। ये लेक्चरबाजी का मजमून नहीं, ग्रंथाकार्य का मजमून नहीं, ये चातुरी का मजमून नहीं, ये जो अनुभवी पुरुष हैं, माउथ पीस ऑफ गॉड बने हैं, जैसे में आवे खसम की मानी तैसा करी ज्ञान में लाने। तो ऐसे पुरुष के पास बैठने से आपको पहले दिन ये जो पूंजी मिल जाती है, बड़े भागों से मिलती है। ये वड भाग होवे वड भागी ता हालर नाम तिहार, बड़े भाग हों मनुष्य जीवन आपको भागों से मिला है, और बड़े भाग हों तो नाम का ध्याने वाला बने, शब्द मार शब्द श्रोत शब्द लिस्ट में बनो। मगर वो कब, उसका अगर पूंजी ही ना मिले तो कैसे। पूंजी कब मिलती है, जब इंद्र के घाट से आप ऊपर आओ। अब इंद्र के घाट से आप ऊपर कैसे आओ, ये बुद्धि का मजमून नहीं, ये प्रैक्टिकल मजमून है। जो खुद इंद्र के घाट से ऊपर जाता है, आपको पहले दिन कुछ न कुछ पूंजी दे देता है, उस नाम वो जिसमें सारी सृष्टि जिसके आधार पर चल रही है, जिसमें आखिर लय होगी, कितनी भारी खुशकिस्मती है नाम का मिलना। जो लोगों को मिल चुका है उसके लिए कल अर्थ किया था कि सत्संगी बनना, समझे। आज वो ये था कि महापुरुषों की सबकी एक ही फाइंडिंग्स हैं, मुख्तलिफ महात्मों से उदाहरण देकर। तो दुनिया में दो किस्म के महापुरुष आते हैं, थोड़े से लफ्जों में। एक तो वो महापुरुष हैं जैसे मैंने जिक्र किया था कि कैद खाने में सुपरिटेंडेंट जेल भी जाता है और डॉक्टर भी जाता है, आम कैदी भी जाते हैं। कैदी तो सजा भुगतने के लिए जाते हैं, और जो प्रेसिडेंट जेल वगैरह जो है सुपरिटेंडेंट, वो जाता है कोई भाग तो नहीं गया, कोई दरवाज़ा तो नहीं टूट गया, कहीं खरू तो नहीं मच गया, आपस में लड़ाई तो नहीं, उसको सेट करने जाता। दूसरा जाता डॉक्टर, देखते कोई लाचार बीमार या सिर बार भेजो भाई चलो। तो अनवही पुरुष भी हमारे दुनिया में आते हैं, उनका ये काम है। अवतार भी आते हैं और संतजन भी आते हैं। अवतारों का काम हो वो खुद बयान करते हैं कि जब जब धर्म की गिलानी हो मैं अवतार धारण करता हूँ, अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया को स्थिति में कायम रखने के लिए, ये उनका काम है। ठीक है, महात्मा कहते हैं अवतारों का वो काम है, और संतों का अपना पोर्टफोलियो, उनके पास क्या पोर्टफोलियो है, तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जगह। कोई भी चला जाए भाव भक्ति से जाए कि महाराज दया करो और बैठ जाओ, क्या करते हैं उस पूंजी नाम की जो सब सृष्टि का आधार है उसके साथ कॉन्टेक्ट दे देते हैं, लोएस्ट लोएस्ट, फिर उसको डेवलप करके आखिर उसमें अगर शब्द निष्ठ और शब्द श्रोत्री हो जाए, जिंदा जावेद बन जाए। बात समझे आपने। तो हमारे हजूर उस श्रेणी के महापुरुष थे, अवतार लोग भी संतों की कदर करते रहे। राम कृष्ण ते को बड़ो तिन भी तो गुरकीन, भगवान राम और भगवान कृष्ण से कौन बड़ा होगा, उन्होंने भी तो आखिर गुरु धारण किया है। त्रिलोकीनाथ तीन लोग के नायका गुर आगे अधीन, त्रिलोकीनाथ होते हुए भी गुरु के आगे सन्नीचर। बात समझे। तो संतों का अपना पोर्टफोलियो, जैसे यहाँ गवर्नमेंट में होता है नहीं, हर एक का पोर्टफोलियो, किसी का लॉ एंड ऑर्डर है, किसी का फॉरेन है, किसी का कोई है, वो अपने अपने डिपार्टमेंट का फुल अथॉरिटी है। इसी तरह प्रभु की दरगाह में भी पोर्टफोलियो हैं, अवतारों का अपना पोर्टफोलियो है, संतों का अपना पोर्टफोलियो है, मगर उनके दोनों के तर्रे बयान में फ़र्क रहता है। वो जब भी कमांडेंट चीफ हैं और वायसराय है, दोनों ही ताकत लेते हैं बादशाह से, मगर तर्रे बयान और तर्रे रहनी और अपना अपना अलहदा अलहदा फंक्शन है। कमांडेंट चीफ कभी हमेशा कहे आई ऑर्डर फायर, मैं हुक्म देता हूँ गोली चला दो, ये कभी नहीं कहता कि बादशाह से मुझे ये ताकत मिली है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, इशारा दे देता मेरे उस निजी रूप का ख्याल करो। वायसराय कभी नहीं कहता कि मैं कहता कि आई कन्वे द ऑर्डर ऑफ द किंग, मैं बादशाह का हुक्म तुमको पहुँचा रहा हूँ। तो ये है फ़र्क दोनों का, दोनों ही अपने अपने दायरे के मालिक हैं। अवतारों के सिलसिले में कैप्टन मेजर्स ब्रिगेडियर्स जनरल्स वगैरह बनते हैं, पेंशनें मिलती हैं, सब कुछ होता है, मगर एक बात है, वो अपने दायरे से किसी को बाहर नहीं जाने देते। अपने दायरे के अंदर इनामात देंगे, जागीरें देंगे, सब कुछ देंगे, मगर अपनी कैसे आज़ाद नहीं करेंगे। संतों का काम क्या है, जो भी उनके पास आ जाए तुरंत मिलावे नाम से उन्हें मिले जो को। ये है फर्क। महापुरुष अवतार भी संतों की कदर करते रहे। भगवान कृष्ण जी के मुतालिक जिक्र आता है कि एक बार उनके गुरु आए, उन्होंने कहा भाई देखो शायद लंबी चौड़ी बात है, थोड़े लफ्जों में एक बात मैं पेश करूँ जो पड़ी गई, कि उन्होंने कहा भाई हमारा चित करता है कि एक बड़ा सुंदर रथ हो, ऐसा रथ हो जो बहुत ही खूबसूरत बड़ा कीमती हो, उसके आगे घोड़ों की जगह तुम और रुक्मिणी दोने लगे। गुरु भक्त थे, पहले लंबा चौड़ा के खाने तैयार किए, दरिया में बहा दिए। खैर आखिर रुक्मिणी के पास ये भाई हमारी आज इम्तहान है भाई, जो कुछ भी हो सो हो, चलो दोनों को घोड़े की जगह लगा लिया, खूब चाप के लगा। ये इतिहास में जिक्र आया है ये बतलाने के लिए कि वो कितने गुरु भक्त थे। हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए सहजे मनो संग, हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता है सहज ही में महात्मो, अब तुम्हारे अंतर परमात्मा प्रकट हो जाता है। उसका कारण कि वो गॉड मैन है, गॉड प्लस मैन, गॉड इन मैन। अगर तुम गुरु मैन बन जाओ तो गॉड मैन बन, गॉड आ गया कि नहीं तुम्हारे अंदर। इसलिए सब महापुरुषों ने अवल तो गुरु का मिलना बड़े भागों से, अगर मिल जाए वो हमको थोड़ी नाम की पूंजी दे दे, ये बड़ी आम चीज नहीं, इसके दाता कहीं कहीं मिलते, आगे भी कहीं कहीं, अब भी कहीं कहीं है। अगर मिल जाए वो तुमको पूंजी भी दे दे उस अनमोल रतन की जो सबका जीवन आधार है, नानक नामे के सब किछ वस्त है पूरे भाग को भाई। अरे वो मिल जाए फिर ये आत्म कृपा न करे तो प्रभु कृपा और गुरु कृपा दोनों ही फल नहीं सकती। इसमें शक नहीं कि जो वो बीज बीज देते हैं वो कभी नाश नहीं हो सकता। को ऐसो समर्थ जो जा रहे इस बीज को, कौन ऐसा समर्थ पुरुष है जो इस बीज को जला सकता। हाँ एक फायदा जरूर रहेगा कि भाई ये बीज मनुष्य जीवन से नीचे फलता नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन से नीचे नहीं जाओगे, आना तो पड़ेगा ना भाई, आने में कौन सा सुख है, उल्टा लटकना पड़ेगा पेट में, बचपन से गुजरना पड़ेगा। अरे क्यों नहीं आप भी कर लेते, कल जैसे जिक्र किया गया था। खैर इस वक्त अब बात यह आती है कि महापुरुष दुनिया में हम आए भागों से मिले, यहाँ पर कई योग हैं। योग के माने युज, किसी चीज से जुड़ना, आत्मा को प्रभु से जुड़ना, यही योग है। अब योग जुड़ेगा कौन सा चीज जिस पर और आलाय से नहीं होगी, ब्लेंड वही चीज होगी जब उसी आलाय से सब सट जाएंगे। तो इसलिए हृदय जिसका साफ है वो तो उसको करेगा। बाकी इंसान की बनावट जैसे मैंने आज सुबह अर्ज की थी, एक वंडरफुल हाउस है, अजीबोगरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम्हारा जीवन आधार भी बस रहा। तुम जो बस रहे हो मन इंद्रियों के घाट पर गिरे पड़े हो, अपने आप की होश नहीं, जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आते अपने आप का पता नहीं होता, जब तक अपने आप का अनुभव न हो और सेल्फ का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए कहा सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। तो महापुरुष हम इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे हैं, अब इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे हैं साधन, ये अपराविद्रय के जितने मैंने सब अर्ज किए थे कि इन सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। पहला कदम है इससे प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड है, इससे फायदा उठा लो, मगर ये प्रेपरेशन है, अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा, पर आना जाना बना रहेगा, ये पितृयान पंथ है। जब तक आप ज्योति मार्ग में नहीं आते, जैसे भगवान किसी ने फरमाया देवयान पंथ कि जीते जी दीवा जग जाना चाहिए, जिसका जग जाए उसकी गति, जिसका ना जगे वो चक्कर खाता। तो महापुरुष जब आपको मिल गए, उसे परमात्मा ने दिया कि महापुरुष मिला दे, मिलना गुरु का बड़ा भागों से होता है। गुरु असल में दुनिया गलत मानों में समझ रही है, गुरु उसी हस्ती का नाम है जो तुमको कुछ पूंजी दे सके उस परिपूर्ण परमात्मा के कॉन्टेक्ट की, कब कैसे उस लेवल पर ले जाकर। इसे तुम जिस्म का रूप बने बैठे हो, थोड़ी सी तवज्जो दे तो वे आप करके थोड़ी पूंजी बीज बीज देते, थोड़ी हो दिनों दिन बढ़ाओ, फिर वही जो गॉड इन मैन है नहीं, वो तुमको अंतर में भी प्रकट हो जाता, उसको नूरी स्वरूप है, वहां पहुंचने पर ही तुम सच्चे मानों में शीश बनते। ये प्रोबेशनरी पीरियड होता है, पहले ये कि हृदय की जमीन साफ होती है, पहले स्वरूप आ जाता, जब थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद अपने आप आ जाए वो गुरु है असल में, जो उसके साथ जुड़ गया वो गुरु सिख बन गया। हाँ वो गॉड पावर जिस इंसानी पोल में माउथ पीस वो इंसान बना हुआ है, वो मिल जाए तो वो उसके साथ हो बैठता है और कभी छोड़ता नहीं। हाँ जिसम छोड़ जाएगा मगर वो पावर कभी नहीं छोड़ेगी। जब ऐसा समर्थ पुरुष मिल जाए फिर और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। तो मेरे याद करने का मतलब ये था कि योग से प्रभु मिलता है। योग कई किस्म के, आप कहेंगे कई किस्म के योग हैं, हठ योग है, प्राण योग है, मानसिक योग है, ज्ञान योग है, कई किस्म के योग हैं, कौन सा योग संत बतलाते हैं। सवाल ये इन योगों में आपस में क्या 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 है, हर एक से चीज मिल सकती। भाई देखिए इंसान के पांच कोश हैं, ठंडे दिल से बिचारिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनुमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पांच हैं हमारे खिलाफ। एक तो अन्न का है ये जिस्म, इसके अंतर प्राणों का है, उसके अंतर मन का है, फिर विज्ञान का है, बुद्धि का, उसके आगे है आनंदमय कोश। अब जितने योग हैं, देखिए हठ योग, इसका तलक अन्नमय कोश से है या प्राणमय कोश है। इससे तुम्हारा जिस्म वाणी सेहत बनती है, रिश्पुष बन सकते हो। प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को बढ़ा सकते हो। प्राणों का ठीक इस्तेमाल करो, प्राणों के आधार पर तुम्हारे श्वास चल रहे हैं। अगर तुमको प्राण काबू है, श्वासों का ठीक संयम चल रहा है, तुम्हारी आयु लंबी हो जाए, कुंभ कर लो, लाखों वर्ष बना लो। तो प्राण योग से आयु बढ़ेगी, तंदुरुस्ती जिस्मानी सेहत पाने के लिए हठ योग और इन दोनों को मिलना होगा। मानसिक योग से मन पर काबू पाना। आगे रह गया विज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। तो इन सब का तलक या तो अन्नमय कोश से है, या प्राणमय कोश से है, या मनमय कोश, या विज्ञानमय कोश से है। आनंदमय कोश आखिरी पर्दा है, उसका डायरेक्ट तलक तुम्हारी आत्मा से। तो आप देखें संतों ने कौन से योग को अख्तियार किया है। ना वो कहते हैं कि हठ योग से जिस्मानी सेहत बना लो, बनाना चाहते हो, प्राणों जहाँ तक जाएंगे, जहाँ से प्राणों का सिलसिला वहाँ तक तुम जा सकोगे। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि साइकिल पक्की सड़क पर चलेगी, जब खेत आ जाएंगे बंजर तो नहीं चल सकेगी। तो प्राणों का जो इनकास कहो है, कहाँ से, चिदाकाश से, वहाँ आगे जा नहीं सकते। तो आगे रह गया बुद्धि का विचार। ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता का समझाना है, एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। अभी आनंद थोड़ी थोड़ी झलक बाद वक्त आ जाती है, मगर प्राप्ति नहीं। तो इन सब के लिए हमारे दिल में दर्जे ब दर्जे है। संतों ने कौन से योग को माना है प्रसिद्ध करके, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि पुराने जमानों में आयु लंबी थी, समझे, लोग लाख वर्ष कहते हैं, सतयुग में थी, त्रेते में 10,000 साल थी, द्वापर में 1,000 साल थी, कलयुग में 100 साल, 100 साल भी कोई नहीं जीता, आजकल 50-60 जनरल है उम्र। कहते वो योग आज कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि फर्ज करो आप प्राण योग, ये वो करो, भी कुंभ करो, नीचे चक्रों से चढ़ो, यहाँ पर हो, अगर तुम दरमियानी मंजिल में बैठे हो। हमारे दूर फरमाया करते थे कि एक मंजिल है, एक मकान, उसकी 5-6 छतें, अगर आप दरमियान में बैठे हो, क्या नीचे आकर फिर चढ़ कर वहाँ से ऊपर जाओ कि वहीं से ऊपर चढ़ जाओ। पहली बार तो नीचे चक्रों को तय करने तुम्हारे को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया। दूसरा, प्राण योग के करने के लिए हठ योग की क्रियाएं चाहिए, रिश्पुष बनना चाहिए, इसलिए वो भी हम फी जमाना हेरिडिटरी नॉट फिट, उसको भी क्या लगा भाई, सेहत के लिए कर लो, पर इसे हम कुंभ वगैरह नहीं कर सकते, इसके उसको भी एलिमिनेट कर दिया। इंसान के अंदर दो ताकतें काम करती हैं, एक आत्मा, एक प्राण। प्राण योग वगैरह अपना काम कर रहा है अभी, अभी आपको कोई पता नहीं, दिन रात काम करता रहा, श्वास चलते रहते हैं, गला हजम होती रहती है, और इसके साथ खून दौरा मार रहता है, बाल उगते हैं, नाखून बढ़ते हैं, आपको कोई पता नहीं, ऑटोमेटिक हो रहा। तो जो महसूस करने वाली शक्ति, उसको कहते हैं सुत, आत्मा। तो उन्होंने क्या किया कि प्राण योगियों ने, योगी भी गए इस रस्ते, मगर खास हद तक गए, उन्होंने 6 चक्रों को तय करके प्राणों और सुत दोनों को समेट कर रूह के मरकज पर आंखों के पीछे आए, आगे सहस्रार तक जा सके, आगे नहीं, योगी जन यहाँ तक जाते हैं। योगीश्वर गति वाले ब्रह्म में लीन होते हैं, उससे जाग उठते हैं आगे, मगर इसके आगे का पता रहते सामने ही मिलता। तो मुझे याद है मैं लाहौर में था, वहाँ पर कई भाई आया करते थे, एक दफा लंबी चौड़ी बात के बाद कह रहे भाई हम तो भाई ब्रह्म से आगे नहीं मानते। भाई ब्रह्म के आगे पार ब्रह्म का तो जिक्र है ही, महात्मा कहते चौथा लोग भी है, उसका ज़्यादा डिटेल से बयान किया, वो कहते हमने देखा भी। तो उनको मैंने कहा भाई ब्रह्म तक तो हम साथी हैं, चलो गले लग कर चलो, अगर आगे कुछ हुआ चल पड़ना, नहीं तो तुम्हारी मंजिल मकसूद तो पूरी होगी। तो संतजन जहाँ तक वो कहे उसे आगे का उपदेश देते हैं, ये भी कंफर्म करते हैं कि हाँ ये जा सकते हैं, मगर जिस रास्ते वो जाते हैं हम नहीं जा सकते, फिर जमाना काबिल नहीं रहे। तो इसलिए वो कौन सा योग सिखलाते हैं, गुरु अमरदास जी साहब फरमाते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सुत शब्द चितलाए। वो तुमको सुत और शब्द की सेवा दे, सुर शब्द योग सिखलाता, सुत का मार्ग ज्ञान मार्ग का तलक एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो निकाल कर ये इन्फ्लुएंस का मजमून नहीं, फीलिंग्स का, इमोशंस का नहीं, ना ही इन्फ्लुएंसेस का, इट इज ए मैटर ऑफ सीइंग बल्कि बिकमिंग। तो बिकमिंग कैसे होगा? आत्मा ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, कहो कबीर राम की अंश, आत्मा चेतन स्वरूप, अगर मन इंद्रियों के घाट से लिबरेट हो जाए, ये कतरा समुद्र में वास लो कर समुद्र रूप बन जाए, ये बिकमिंग का सवाल है। और बाकी स्टेजेस योगे आपको खास खास स्टेज तक पहुंचाते हैं, इसलिए कहते हैं मालिक दया करे कोई सत्स्वरूप हस्ती मिला जाए। वो कौन सा सुत योग आप कौन सा योग सिखलाता है? कहते हैं सुत योग, इसमें प्राणों का संयम नहीं, इसलिए बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सकता है। बच्चों को बैठा, अच्छा मैंने जिक्र कर रहा था कि पुराने दौर में ब्राह्मण लोग होते थे, 4 साल के बच्चे को बिठा कर 2 जन्मा बनाते थे, ये जिक्र था सुबह। 2 जन्मे से मुराद टू बी रीबॉर्न इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, पिंड से ऊपर जाना इनटू द बियॉन्ड, ये 2 जन्मा इसको कहा जाते थे। वो बिठाते थे 2 जन्मा करके, साथ गायत्री मंत्र देते थे, और गायत्री मंत्र में क्या दिया है? तत्सुत्र वरेण्यम, अंतर तुम्हारे सूर्य जैसे प्रकाश है, उसको प्रकट करते थे, ये उनमें समर्थता थी। आज भी ऐसे ब्राह्मण लोग मिले जो ये कह रहे हैं पांव धोने को तैयार, ज्योति के विकास ही से आना जाना खत्म हो सकता है, ये भगवान किसी जी कह रहे हैं। तो महापुरुष पहले दिन आपको ज्योति का विकास, आपके पहले दिन दीवा मरसा देते हैं, माफ करना, दीवा मरसाने क्या जीते जी, अगर दीवा मरसा जाए तो गत वाला हो जाता, बेगता नहीं रहता। पर उस पूंजी को जो मिली है, मैंने अभी अर्थ किया था कि वही हमारा जीवन आधार, उसी में एवोल्यूशन, उसमें सब कुछ उसी में होता है, आखिर वही रहता है, हुवल अवल हुवल आखिर, उसी वही सबका जीवन आधार है। ऐसा पुरुष अगर मिल जाए तो हमको कौन सी सुर्ख शब्द योग सिखलाता है, समझे? सुर्ख शब्द योग किसको कहते हैं? सवाल थोड़े लफ्जों में, सुर्ख कहते हैं तवज्जो को, होश को, वेकफुलनेस, जागृति जो हम महसूस करते हैं, आंखें बंद करो, खोलो, बंद करो, एक्ट ऑफ मेडिटेशन में कोई अंतर, वेकफुल जागृति महसूस, दैट इज होश, दैट इज वेकफुल, दैट इज सुर्ख। और शब्द कहते हैं वो पावर जिसके आधार पर सब खंड भ्रमण चल रहा है, उसको धनात्मक नाम भी कहते हैं, उसको श्रुति भी कहते हैं, उसको उदोगीत भी कहते हैं, उसको रूहानी राग भी कहते हैं, उसको आकाशवाणी भी कहते हैं, उसको नाद भी कहते हैं, मुसलमान फकीर उसे समा कहते हैं, और सुल्तान उल अधकार सौते सरमदी शुक्ल नसीरा कहते हैं। बात वही, पिंड से ऊपर आओ, हाय योगी आए, कोई भी आए, आगे एक ही शब्द मार्ग है, जहाँ तक का उसको तलक मिला वहाँ तक रह गया, जो सहसार तक गया वो आगे नहीं जा सका। तो शब्द की भी आगे स्टेजेस हैं, एक अनाज शब्द है, एक सार शब्द है, एक सत शब्द है, सत शब्द में फिर लय और अशब्द में लय हो जाता है, इसके 2 ही आधार है, एक ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। तो सुत का इसको महापुरुषों ने, ईसाइयों ने वर्ड करके बयान किया है, नाम और बानी करके बयान किया है, इसको अमृत करके कहा है, इस सब का प्राणों पर काबू पाकर उसके साथ इसको अकथ कथा भी कहा है, और अनाज शब्द ये कुदरती है, सुत का उसके साथ स्वाभाविक संबंध इन्नेट परमात्मा। देखिए एक मिसाल, एक है दरिया, एक है लहर, एक है कतरा पानी का, तो कतरे का स्वाभाविक संबंध लहर से है, लहर समुद्र का इजहार है या दरिया का इजहार है, तो सुर का उसके साथ स्वाभाविक संबंध है, और उसमें एक मिकनातीसी ताकत है, कशिश है। जब ये कतरा जो अब मन इंद्रियों के घाट पर घिरा पड़ा है, कोई महात्मा हमको इससे आलाय से करके उसके जोड़ते उसे मिकनातीसी ताकत खींच कर अपने आप लय कर देता है, कतरा लहर में और लहर दरिया में समा जाती है। तो इसलिए नीचे हर योग की क्रियाओं से तो जिस्मानी सेहत बन सकती है, प्राण योग से प्राणों पर काबू पाकर तंदुरुस्ती और आयु को लंबा कर सकते हो, मानसिक योग से मन पर काबू पाकर ज्ञान योग से बुद्धि को सूक्ष्म करके जीव और ब्रह्म की एकता को समझना एज ए मैटर ऑफ इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट बिकमिंग। बाद लोग ये कहते हैं उसी नशे में आकर था आए मैं ही सब कुछ हूँ, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ नॉलेज से जिसको हो उसको कास्मिक अवेयरनेस जागती है, उस कास्मिक अवेयरनेस भी फाइनल गोल नहीं, उस पर सुपर कॉन्शियसनेस है। ये किनको अनुभव होती है? जो इससे भी, इसलिए सूफियों के दर्जे से भी संतों का मार्ग उठा। तो इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं कि भाई दुनिया का कोई काम नहीं, ये सुरती से सारे काम हो रहे हैं, जब तक सुर साथ न हो। देखिए इस जिस्म के इंद्रिय हैं कान, तुम्हारी सुर्तियाँ टेंशन कहीं एक ख्याल में मैल है, कान खुले हैं कोई आवाज़ देता आप सुनते नहीं, ये नेचुरल योग। आँख खुली है ख्याल मैल है, सुर्त कहीं लगी पड़ी है, कोई गुजर जाता आपको को पता, न्यूटन के पास एक बैंड बजता चला गया, समझे। तो किसी ने पूछा, वो अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में लगा था, पूछा क्यों भाई नीचे यहाँ बैंड चल बजता गुजरा, कैसा मुझे पता ना। ये है सुर्त, जब तक सुर्त इंद्रों के साथ ना हो इंद्र काम नहीं करते। तो संत महात्मा आपको पहले दिन ही सुर्त की ट्रेनिंग देते, बच्चे का सवाल नहीं हल होता ऐसे सिर पर आदस्ता, ओ सुर्त का ठिकाना यहाँ है आपके। जब उसमें आप बाहर से हटकर यक्षुई में जाते हो वहाँ ये है सुर्त योग, इसकी डेवलपमेंट बाकायदगी से करनी है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि दुनिया के जितने काम सुर्त के आधार पर हो रहे हैं, अगर सुर्त साथ ना हो तो कोई काम नहीं कर सकता। तो वाणी में ये कहा है जयी सुर्त तैयार तिन रहो, जैसी सुर्त होगी वैसा आगे रास्ता बने। आप इस सुर्त को देखिए, पहलवान लोग क्या करते हैं, वर्जिश करते हैं, अपनी अटेंशन जिस्म में लाके जिस्म के पहलवान बन जाते हैं। इसी सुर्त को अगर दिमागी सेंटर से ब्रेन सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन जाते हो। अरे इसी सुर्त को अगर आप उस परिपूर्ण महान सुर्त से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बन जाओ। तो ये सारा खेल ही सुर्त पर चल रहा है, इसलिए इसके कामयाबी होने का कुंजी क्या है, की टू सक्सेस इज वन द ओन थॉट, अपनी सुर्त को कंट्रोल करो। थॉट कहो या टेंशन कहो, ये आउटकम है हमारी अवेयरनेस का, जो बेसिक चीज है। तो इसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा, यही ट्रेनिंग है जो महापुरुष देते हैं। ये बच्चा बूढ़ा जान सब कर सकता है कोई भी हो। तो इसलिए सुर्त इसमें सिर्फ तवज्जो या सुर्ति से अंतर में वो कांटेक्ट देते हैं, प्राणों को नहीं छेड़ते। महापुरुष जब मिलते हैं उनमें ये कॉम्पिटेंसी है, इंद्रों के घाट से वे आप करा खैचे सुर्त गुरु बलवान, समझे, ऊपर लाकर उस सुर्त को पूंजी दे देते हैं कॉन्टेक्ट की। उसको दिनों दिन सुनना पड़ता है, साउंड प्रिंसिपल है। और इनर में दो ही चीज़ें हैं, एक सुर्त एक नेत्र, दोनों ही डेवलप होकर उसकी लाइट के देखने वाला भी बन जाता है, सुनने वाला भी बन जाता है। कब ये इंद्रों के घाट से जब ऊपर आए, ऊपर का बात अपने आप आ नहीं सकता, कोई आ सकता है खुशी की बात, अगर ना आ सके तो किसी की मदद ले ले। तो इसके तीन साधन हैं बड़े मोटी बात। इसमें सिमंद है पहला कदम, दूसरा है ध्यान, तीसरा है भजन। सिमंद किसको कहते हैं, किसी जीव के चीज़ के जप को। हम दुनिया का सिमन कर करके इसके संस्कार इंद्रियों के घाट से हमारे अंदर बैठ बैठ कर हम दुनिया का रूप बन गए हैं। सपने भी इसी के आते हैं, बढ़ाते हैं तो भी दुनिया निकलती है। तो पहला काम क्या है, जैसे दुनिया में बस गई इसी तरह दुनिया को प्रभु सिमन से खाली करो। ये घट के हृदय एको जप एको साला एको सिमर एको मना एक उसके गुण गाओ अनंत मन तन प्रीत जाप भगवान। ये पहली बात। तो सिमन पहला कदम है, जब सिमन पक जाए तो धारणा शक्ति जाग उठती है। ध्यान किसको कहते हैं, किसी चीज के साथ अपनी चीज सुर्त को बांधना, इसका नाम ध्यान है। उस बांधने में जब टिकाव बनेगा नित खुल जाएगी, लाइट आ जाएगी, सात शब्द के साथ सुर्त के कानों ही से आप उसको सुन सकते हो। दोनों चीजों के जारी हो जाने से फिर उस लाइट मार्ग में रेड इन फॉर्म ऑफ द मास्टर अपने आप आ जाता, खुदा वही है जो अपने आप आ जाए, समझे। तो शिष्य सच्चे मानों में शिष्य तब ही बनता है जब इंद्रियों के घाट से ऊपर आके अंतर के गुरु स्वरूप प्रकट हो जाए। वो गुरु स्वरूप इंसान नहीं, इंसान के अंतर इंसान नहीं जा सकता है, वो गॉड पावर है जो शक्ल में उसको जाहिर होती है। जब वो मिल जाए ये सच्चे मानों में शिष्य बनता है, ये पावर उसके सदा अंग संग रहती है, जंगलों में पहाड़ों में बियाबानों में। वही पहली स्टेज दूजे मंजिलों में गुजरते ही आखिर सतनाम में लय होता है, हमको भी करके फिर सतनाम आपको अल्लाह खग अनामी स्वामी एब्सोल्यूट गॉड में लय कर देता। ये है मार्ग। ये कहाँ से शुरू होता है, सिमन से, ध्यान धारणा की शक्ति से, फिर अंतर में प्रकाश होने से। तीन बंद लगाए कर सुन मुख से कछु न बोल, बाहर के पट देकर अंतर के पट को। बाहर से हटने का सवाल है, साइंदा की पावना इंद्रों पटना ते दरलावन, बात तो सिर्फ इतनी। ये चश्म इसलिए कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद गर्न बीनी सिर हक बंद बंद, कि आंखों को बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, लबों को बंद कर लो। कहते अगर हकीकत आपको ना खुले तो समझो तुम माहौल कर लेना। तो ये तीनों साधन कहाँ से शुरू होते हैं? यहाँ से नुक्ता है सवैदा को, अष्टदल कमल कहो, दिव्य शिशु कहो, या शिव नेत्र पर किए जाते हैं। दो भावों के दरमियान जो ये रूह का ठिकाना है, इसी को दो भगवान कृष्ण ने जिक्र किया है। यही वे अप है पिंड से बाहर जाने का। मरकर भी रूह यहीं सिमट कर आगे जाती है। जीते जी यहाँ आने का संयम पहले दिन महापुरुष दे देते। तो जिस मौत से दुनिया डर रही है ना, आखिरी दुश्मन जिस पर हमने फतह पाना है वो मौत है। मरकर तो सारा जहान पिंड को छोड़ता, तो महापुरुष जब मिलता पहले दिन मरने का एक्सपीरियंस दे देते हैं। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्स, अपनी सत्या से, अपनी थोड़ी तवज्जो से। जब थोड़ी पूंजी मिल जाए गुरमुखा वे जाए, लेकिन रोज रोज करो मरने का खौफ ना है। मरने से हम क्यों डरते हैं? मरने ते सब जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइये पूर्ण परमानंद। कहते सारा जहां डरता है मरने से, कहते मेरे दिल में खुशी है क्योंकि रोज आता जाता गुरमुखा वे जाए नहीं। तो मरने के से डरने का दो कारण है। एक कारण हमें मरना नहीं आता, पिंड को छोड़ना नहीं आता। आन समय आता है समा जिसमें छोड़ना पड़ता है, घबराहट होती है, गिड़कता, टांगे मारता, बाजू मारता। महात्मा पहले दिन तुमको पिंड से ऊपर आने की थोड़ा एक्सपीरियंस देता, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियस। इसलिए कहा लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। बमीरा दोस्त पेशज मर अगर मेरी जिंदगी गाय दोस्त, अगर तू हमेशा का जीवन चाहता है तो मरने से पहले मरना सीख। ये है राज जो सबसे ऊपर। इसीलिए गुरु मिल जाए फिर मौत का खौफ नहीं, क्योंकि मौत का मरला पहले दिन आपको पूंजी देता है। रोज अभ्यास करो गुरु मुखावे जाए निशन। तो इसको पाकर इंसान दूसरा कहाँ जाना उसका पता नहीं, घबराहट इसलिए भी ज्यादा होती है। दुनिया के टैच में बस रही है, बार बार यहीं आता। अगर गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बुझे को, अगर गुरु कृपा से ये जीते जी मरने के राज को जान ले। हाउ टू एनालाइज वन सेल्फ, हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, कैसे जिस्म जिस्मानियत से तुम ऊपर आ सकते हो, तो उस वक्त क्या होगा? तुम उस कॉन्शियस को वर्कर ऑफ द डिवाइन प्लान बन जाओगे। ये सब वो कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। नानक हुक्मे जे मुझे ता हमें कह रखो, अगर तुम उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर बन जाओ फिर तुम हमें नहीं कहते। इसलिए संतों में कभी ये नहीं कहा कि मैंने किया, वो कहते मेरा गुरु कर रहा। उसके गुरु के गॉडमैन हरजियो नाम परे हो रामदास, हरि का नाम ही रामदास है भाई, रामदास इंसान नहीं। उसमें रेडिएंट फॉर्म में वो गार्ड पावर इजहार करती है, उसको कभी नहीं छोड़। जंगलों पहाड़ों बियाबानों में अभी जिक्र कर रहे थे, अरे भाई कहते मुझको मिली है तुम्हारे अंतर भी है, अगर आपको नहीं मिली तो हमारा कसूर है। तो फिर जब यहाँ पहुँच जाए फिर आगे काम शुरू। तो गुरु भक्ति, गुरु का प्यार किस बात में है, उसकी सेलिब्रेशन किस बात में है कि उसको मत्था तो टेके उसका कहना ना माने। वो क्या कहते जीते जी मरना सीखो पहले दिन। नानक ऐसी मरनी जो मरे तांसा जीवन हो, अगर ऐसे जीते जी मरने को सीख जाओ हमेशा के जीवन को पा। तो ये राज जिंदगी है जिसको वो हल कराते महापुरुष, ये संतों के हाथ में है, उनका कुछ नहीं लगता। समुंदर से लाखों जीव पानी पी जाते, कोई कमी थोड़ी है। आलिम आपको इल्म सिखला सकता समझे, और डॉक्टर आपको जिस्म की साइंस का मायर कर सकता। अरे आत्मन भवी बिठाएगा, थोड़ी तवज्जो दे, 10-20-500 बैठे सबके वे आपका एक्सपीरियंस मिलेगा। अक्षरों का बताना कोई नाम का देना नहीं। हमारे जोर फरमाया करते थे कि चरखा काटने वाली लड़की भी अक्षर बतला सकती है। सवाल है एक्सपीरियंस का, पूंजी का देना है थोड़ा एक्सपीरियंस, हाउ टू राइज, थोड़ा मिले तो फिर आगे दिनों दिन बढ़े। तो ये इस काम के करने के लिए गुरु का मोहताज होना पड़ता है जो इसमें मायर है। तो इसलिए कहा कर्म होए सदगुरु मिलाए, सेवा सुर शब्द चितलाए। सारे महापुरुषों ने इसीलिए कहा पीरा बिगरी के बेस पीरी सफर, बस पुराफत हो खौफ हो अंतर जाना। बाहर किसी न किसी उस्ताद की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। एक ऐसी मंजिल में जाना जो अंधेरे के पार है, क्या वहाँ किसी की जरूरत नहीं? प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस है। पुराने महात्मा क्या हमें इस बात में मदद कर सकते हैं? भाई गाइडेंस के लिए ठीक, जैसे मैंने याद किया ग्रंथों पोथियों के समझने के लिए भी राइट रिपोर्ट किसी अनुभवी पुरुष की जरूरत चाहिए जो उसने उस तरफ कदम उठाया है, और दूसरे उठाया ही नहीं बल्कि हमें कांटेक्ट भी दे सकता। तो इसलिए किसी जिंदा महापुरुष की ज़रूरत है जो हमको इन हिस्सों से ऊपर ले आए। जब तक आप हिस्सों से ऊपर नहीं आते इंद्रियों के घाट से, तुम गायब की तस्वीर से बेइल्म रहते हो। तो ये थी खासकर समर्था जो हमारे हजूर में थी, वो पूर्ण महापुरुष थे जिनमें ये हाथ बागडोर थी। क्या ये पोर्टफोलियो उनका था, तुरंत मिला हुए राम से उन्हें मिले जो को उनके जीवन में देखा गया कई बार। कहने अच्छा भाई सुनो ये शब्द आ रहा, सुनने वाले आ जाते, सुनने में आ जाता था। तो नाने गगनते सो मेरा गुरुदेव, गुरु भैया जो अंधेरे में प्रकाश करे, संत संग अंतर प्रभ दीठा, सदगुरु मिले तखी वेखा। बड़े साफ लो सर, आंखें बंद करते हो अंधेरा है, जो स्याही के पर्दे को हटा सकता है उसका नाम है सदगुरु। पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु मोहे भाव। ये हमारे हजूर में ये काबिलियत है, कॉम्पिटेंसी। तो महापुरुष की यही निशानी है तुमको कुछ दे सके। तो उनकी याद में आज का दिन सुबह का और शाम के भी थोड़ी टास्क महापुरुषों ने दी, मगर असल बात सत्संगी बनने के लिए हम समाजों में दाखिल हुए, महापुरुषों के चरणों में गए, उन्होंने थोड़ी सत्य के संग की पूंजी दे दी, उसको दिन दिन बढ़ाना है। अरे भाई जिसको ऐसे महापुरुष नहीं मिले उनकी अभी तक प्रभु की तरफ से दया नहीं हुई। अरे जिनको ऐसे पुरुष मिल गए और कांटेक्ट मिला फिर नहीं करते, वो कितनी बदकिस्मत है। तो उसके लिए कैसे डिटेल में कलर किया था, सुबह भी इसी बारे में कैसे अंतर्मुख हो सकता है, क्या ये साइंस को बयान किया था हजूर के मुख्तलिफ थोड़ी टचेस लाइफ की देकर ये पेश किया गया था। तो हमारे हजूर उस श्रेणी के मालिक थे कहो, जिसको दुनिया बहुत कमयाब हस्तियाँ ऐसी आया करते, उन्होंने वही तालीम दी जो परंपरा से चली आई। उन्होंने वो किसी समाज के खिलाफ नहीं थे, ना ही नई बनाते थे तो ना ही पुरानी तोड़ने के हक में थे। वो ये फरमाया करते थे भाई कुएं आगे ही बहुत लगे पड़े हैं, कुएं पर नया कुआं लगाने की क्या जरूरत है, जिसमें हो उसमें। महापुरुष तो हर एक समाज में आए हैं, रविदास जी चमार थे, नामदेव छिबे थे, कबीर साहब जुलाए हुए थे, तुलसी साहब ब्राह्मण थे, गुरु साहिबान स्वामी जी महाराज खत्री थे। अरे भाई खत्री वगैरह ये लेबल तो हमने लगाए नहीं है, परमात्मा तो आत्मा देधारी बनाए, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। तो हजूर क्या दुनिया में इस वक्त एक बड़ी भारी ज़रूरत थी, जबकि हर एक इंसान बाहरी मुखी साधनों में प्रवृत्त होकर उसी को एंडाल और बियाल और एंडाल समझ रहे थे। वो कहते हैं ठीक इसकी अपनी कीमत है, सोने की अपनी कीमत है और पीतल की अपनी कीमत है और लोहे की अपनी कीमत है। तो हर एक चीज़ की वैल्यू ज़रूर है, मगर अपने अपने दर्जे बदर्जे हैं। रुपये को रुपया कहो, पाउंड को पाउंड कहो, तो सन महात्मा कहते हैं भाई सुर्त बेसिक प्रिंसिपल है हर एक चीज़ की, जिसके साथ सुर्त है उसी में कामयाबी। अगर सुर्त के साथ आप उस पूंजी के कॉन्टेक्ट में नहीं आते, सुर्त कब सुर्त बनेगी, जब मंदिरों के घर से आज़ाद होगी। लिबरेट कैसे हो, इसीलिए महापुरुषों के पास जाते हैं, वो हमें इंद्रियों के घाट से वे आप करने का थोड़ा एक्सपीरियंस देते हैं, फिर थोड़ा देकर थोड़ा हायर कॉन्टेक्ट की पूंजी देते हैं, फिर उसको दिन दिन बढ़ाओ और कामयाब हो सकते हो। तो इसलिए महापुरुष जब भी आते हैं इस बात को, ये जो परंपरा से चली आई है ये नेचुरल कोर्स है, जिसमें ना कोई एडिशन हुई ना अल्ट्रेशन हुई, समझे, ना कोई नई चीज़ उसमें डाली गई, मगर महापुरुष आते रहे हमको यही सबक देते रहे, जब वो चले गए हम भूलते रहे, फिर कोई और महात्मा आके जगा गया। ये सिलसिला परंपरा से चला आता है, कबीर साहब गुरु नानक साहब से और पुरातन ऋषि मुनियों ने भी इनकी स्टेजेस का जिक्र किया आप अपने मुताबिक। अरे शब्द मारे ही शुरू से आखिर तक उसी के सब पुजारी हैं। नाम की किताब जो कोटेशन दिए गए मुख्तलिफ मजबूत से वो आपके पास है, उसमें ज़्यादा लेबोरेटरी के में ये बात पेश की गई है। तो हमारे हजूर इस सुर शब्द योग के बड़े भारी कॉम्पिटेंट पहलवान समझे, योगियों के सिर योगी समझो और महापुरुषों के सिर महापुरुष समझिए। तो उनके पास जाकर इस बात की चीज की समझ, उनका आज का दिन मैं यही अर्ज कर रहा था कि वो गॉड पावर थी, क्राइस्ट पावर थी, वो गॉड इन मैन पावर थी जो वर्क कर रही थी इस पोल पर। हमारी खुशकिस्मत थी जिनको वो देखने नसीब हुए दिन, जिन्होंने वो आंखें देखी हैं वो भूल नहीं सकती, समझे, उनकी प्यारी प्यारी जो याद है कभी भूल नहीं सकती है, उसको देखकर हमारी आंख रोशनी पाती थी, उसके रूह को एक बड़े प्यार की फजा मिलती थी, उसकी याद दिन रात जिन्हें एक बार वो सूरत देख ली उसमें एक रूहानी खूबसूरती होती है। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता, गुले बुलबुल गुले दीवार पे शायदा नहीं होता। जहाँ पर बलबल हमेशा फूलों पर महकेगी कभी दीवारों पर उकरे फूलों पर नहीं, न कागजी फूलों पर। अरे जिस किंतु वो रूहानियत की झलक है, काया कामण अत सवालो पिर वसे जिस नाले, जिस कायम के तुम वो प्रभु प्रगट है, मौत भी सावगार है, उसकी काया अति सुंदर है। उनके चेहरे से कई जलाल टपका करता था। एक बार किसी ने पूछा उनकी दाढ़ी बड़ी स्वाति, उसने ऐसे मालूम होते थे जैसे कुछ सोने की तारे जुड़ी पड़ी जो है, ये कैसा खिलाफ लगाया आपने। तो वो रूहानियत की जो किरणें फसल आला से निकलती वो उसको झलक दे जाती थी। वो एक बार नजर जिस पर पड़ लेती थी या जो कोई एक बार उनको देख लेता था, दिल में वो समा जाती थी, बात छोड़ती कभी नहीं थी। तो अंत समय कहते हैं महापुरुषों के पास होना बड़ी खुशकिस्मती है, पर ये देखा गया है जिसको पर भी उनकी एक बार नजर पड़ी वो फिर अंत समय उसके संभाल को आ गए, और अब भी आते हैं, आगे भी आते हैं। हाँ, जिस्मानी तौर पर जरूर वो चोला छोड़ गए। बाहर चोले में जो खूबसूरती है उसमें दो खूबसूरती है, याद रखो। अगर अंतर में भी वो चीज़ मिलती भी रहे, थोड़ी बड़ी ढारस रहती है, मत जो खूबसूरती बाहरी चरणों में है, अरे भाई अंतर में भी वो खूबसूरती नहीं मैं। बड़ी भारी गल है, एक से हमारा मित्रता हो, दोस्ती हो, वो छांग बदल कर आ जाए तो उसको देखकर आपकी डबल गुरु मुख वही है जिसके अंतर बगैर गुरु के और कोई न बसे। चुनाव पुरुष फजाए सीना दोस्त, मेरी सीने की फजा उस प्यारे प्रीतम से इतनी भर गई कि ख्याल खेश गुमशुदा जबीरम, कि मेरे अपना ही ख्याल को मैं कहूँ। यही सेंट पॉल ने कहा, इट इज आई, ये मैं हूँ, आई लिव, मैं रहता हूँ, कहते नॉट नो आई, इट इज क्राइस्ट दैट लिव्स इन मी। जो इस अवस्था को पा गया, गोर अंदर समा गया, वो फिनाफी शेख होकर फिनाफी अल्लाह हो। तो ये है गुरु भक्ति का राग। जिसके अंतर ये नहीं वो तरक्की कर ही नहीं सकता। क्राइस्ट ने एक मिसाल देकर समझाने का यत्न किया है, क्या कहते, अंगूर का पेड़ है, उसमें जो शाखें लगी रहें वो फल देती हैं, जो कट जाएं वो फल नहीं दे सकती। इसी तरह फरमाने लगे, आई एम द वाइन, मैं अंगूर का पेड़ हूँ, दाउ आर्ट माई ब्रांचेस, तुम मेरी शाखें हो, जब तक शाखें मुझ में जुड़ी रहेंगी यू विल ब्रिंग फोर्थ अबंडेंट फ्रूट, तुम फल दे सकोगे, अगर कट जाओगे तो नहीं। अरे भाई गॉड एंड मैन, अगर वो हमारे अंतर प्रकट हो जाए तो गॉड उस शक्ल में आ सकता है, इंसान इंसान के अंतर में नहीं जा सकता। बड़ी मोटी बात, तो गुरु मैन ही गुरु भक्ति सब मजहबों में सब महापुरुषों ने ये जीना बतलाया है। मगर गुरु भक्ति किसको कहते हैं, सवाल यही रहा, क्या डोडो करने में गुरु भक्ति है, क्या बाजे गाजे बजाने में, या एक मार्केट लगाने में, या बड़ा मेला और इकट्ठा कर देने में, ना भाई। किसी महापुरुष की याद इसी बात में है कि जो पूर्णे उसने डाले थे हमारे सामने, जो पूंजी उसने हमें दी थी, उसको कहाँ तक बनाया। उसने सत्संगी बनाने के लिए हमें अपने चरणों में लिया था, सत के संग की पूंजी भी दी थोड़ी सी, उसको डेवलप करना था, और देखो कहाँ तक किया। पिछले साल कहाँ थे, आज कहाँ। असल कमेमोरेशन किसी महापुरुष की यादगार की केवल इसी बात में है कि जो सबक उन्होंने दिया हमें वो सत का संग कितना मिल चुका, कहाँ तक पहुँचे, क्या वही है चाल बेडंगी जो आगे थी सब भी है, या हम पहली जमात में थे, अब दूसरी में चले, अब तीसरे में चले, अब चौथी में चले। अगर कई भाई मिलते हैं वो कहते हैं भाई पहले बड़ा कुछ मिलता था, अब कुछ नहीं रहा। अरे भाई दिनों दिन तरक्की होनी चाहिए कि तरट्टी होनी चाहिए, तनजली होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि जो हदायत है उसको बरकरार रखने के लिए हमको दी जाती है, उस पर हम अमल नहीं कर बात, और इसके अमल करने के लिए काबिलियत का पैदा होना के लिए एक सिर्फ साधन कर लो, प्रेम। परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी अंश है, इसमें इन्नेट तौर पर प्रेम की अंश है, और प्रेम ही से प्रभु मिलता है। दसम गुरु साहब ने जिक्र करते हुए मुख्तलिफ बेहकों का ये बयान किया, साच कहूँ सुन ले ओ सबे जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभु पायो। क्या भाइयों, मैं तुमको सच सच की बात सुनाता हूँ कि जिन्होंने प्रभु को पाया, प्रेम किया, वही प्रभु को पा सकते हैं। समझे, प्रेम की क्या निशानी है, जब याद आए दो आंसू भर आए, बस बोल कुछ ना सह, आंख दे तहरो, ये निशानी है प्रेम की। देखो दुनिया के लिए आपके कई आंसू बहे, बच्चा बीमार हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, हाव के लेता हाया करता है, जारो दार रोता है। अरे भाई तुम्हारे अंदर कभी प्रभु की याद के लिए भी आंसू बहे? आंसू असल माने में वही है जो आंसू हो उस तरफ के लिए है, ये जो आंसू हमारे बह रहे ये सब ईंसू हैं दुनिया के लिए है। जिसके अंतर उसके लिए आंसू बहते हैं वो मरकर कहाँ जाएगा, वहीं जिस तरफ उसके आंसू बह रहे हैं। तो मेरे बात समझे, तो प्रेम ही से प्रभु मिल आज कहूँ सुन लियो सभी जिन प्रेम की हो तिन ही प्रपायो। प्रेम किससे हो सवाल यह है। अरे भाई परमात्मा की अमानत है, उससे प्रेम बढ़ाओ। जब तक उसको नहीं देखा जिस इजहार में वो बाहर हमारी तरह मलमूत्र का थैला लेकर चलता फिरता जीवों को निकालने के लिए, घुमी हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए वो आता है, उसके साथ प्यार करो। उसका प्यार प्रभु का प्यार है। हर की पूजा सतगुरु पूजो। जब तक हरि को नहीं देखा जिस जो उसका स्वरूप बनया उसकी पूजा भी हरि की पूजा है। बाहरी लेवल में अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष को तो एक पापी भी देख सकता, अरे उस परमात्मा को कौन देखा जो उस लेवल में जाएगा। तो इसलिए बड़ी भारी बरकत है कैसे कभी ऐसे महापुरुष का मिलना, हरि का प्रभु का मिलना, महापुरुषों का मिलना, हरि का ही मिलना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि अगर तुम किसी वली अला के नज़दीक आ गए समझो तुम प्रभु के नज़दीक आ गए, अगर तुम किसी वली अला से दूर हो गए समझो प्रभु से दूर हो गए। तो किसी अनुभवी पुरुष पूर्ण पुरुष की निशानी क्या है? कोई रे सतगुर संत कहावे नैनो अलख लखावा। कोई आपने संत सतगुर कहलाता है वो आँख बनाते जिससे वो अन्यों के घर से नहीं लिखा जाता, हम उसके देखने वाले बनो। यही निशानी है, जाओ ढूंढो जहाँ मिलता है। एक मिले, दस मिले, पचास मिले, हजार मिले। अरे भाई सच्चे मानो में किसी समाज में रहो गुरु सिख बनो, बात तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। गुरु वो है जो जाग उठा है, जो जागा है तुमको जगा देगा, बात तो यही। तो आज का दिन उस महापुरुष पूर्ण पुरुष जिसका के मिलने से हमें होश आई और जिसकी कृपा से अब भी ये सिलसिला सारा चल रहा है, ये सब उसकी कृपा से है और ये जो कुछ चल भी रहा है उसी के हुक्म के मुताबिक ही चल रहा है। उन्होंने फरमाया अंत समय जब आया थोड़ा सा तो स्वामी जी ने इनको आज दृश्य नजर आया पेश कर दिया, तो मेरे पास पूछने गए कि ये क्या बात, क्या मैंने क्या देखा। मैं कह भाई एक दृश्य आपको बताया गया, तुम कहते हो कमेमोरेशन क्या होती। तो दृश्य को वो था, वो आंखें थी जो आंखों में आंखें डालकर एक जज्बा पैदा कर गए उसी की बरकत आपको मिल रहा। तो उनके पास ये नवंबर 47 की बात है, वो फरमाने लगे भाई एक ऐसी कॉमन ग्राउंड रखो जिस पर सब समाजों के भाई इकट्ठे होकर बैठे, अपने अपने बोले रखें, अपनी अपनी समाजों में रहें, अपने अपने लेबल लगाए रखें, सदाचारी जीवन इंद्रियों के घाट से ऊपर उस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ जाए। उसका नाम रूहानी कॉलेज रखो, रूहानी सत्संग। ये लफ्ज उन्हीं की तजवीज़ करता है, मेरा नहीं। तो उनकी सेंक्शन से ही ये सिलसिला चला जिसका नाम रूहानी सत्संग है, जो आपके सामने है। इसमें इनमें उसी उन्हीं की बरकत काम कर रहे हैं। महापुरुष इंद्रियों के घाट से ऊपर होते हैं। मैं आखिरी थोड़ा सा दृश्य आपको पेश कर दूँ। महापुरुष बड़े मिस्टीरियस वेद होते हैं समझाने के लिए। इतना फरमाया कि मुझे अंत समय तकलीफ होगी जिस्मानी तौर पर, मगर वो तकलीफ रवा होगी कब, जब जिसने मेरे पीछे काम करना वो मेरे पास बैठेगा। अब वो तेरा लोगों ने जोर लगाया, कुछ ऐसा सामान बन गया। तो आखिर मेरे पास आया, कह रहे भाई जिनको पता था कि हजूर ने फरमाया था भाई तुम ये दौलत मैं तुमको बचता हूँ, वो आया कहने को कि भाई हजूर ने ये फरमाया था, हमें पता है, आप चलो उनके पास बैठो शायद तकलीफ रफा हो। बात तो एक खेल था समझाने के लिए। खैर मैं गया, मैंने कहा 5 मिनट बिल्कुल अलाउड वक्त मुझे चाहिए, कोई अंदर ना हो, सब चले गए, मैं रहा और हजूर रहे। तो मैंने प्रार्थना की कि महाराज जो इंद्रियों के घाट से ऊपर जाते उनके जिस्म को काट लो, उनको क्या तकलीफ है। आप वो हो जो जब चाहो गुरमुख आवे जाने या पूर्ण पुरुष हो, तो आपको तो कोई तरह हमसे ये दृश्य नहीं देखा जा सकता। दया जब आँख खोली तो बिल्कुल काम उनको आया था, कोई तकलीफ नहीं। आँख खोली बड़ी जैसे शेर बबर की होती है, देखते रहे जैसे एक चार्जिंग होती है ना सारे जिस्म में होती रहे, 2-3-4 मिनट करते रहे, फिर आँखें बंद कर ली, बेरी काम होता, वही जो पहले रौनक थी, वही 3 धारें जो चलती थी माथे पर, बिल्कुल काम इनको आया था। मैंने बुलाया उस वक्त जो वहाँ से, देखो भाई हजूर की कोई तकलीफ बाकी है। तो ये उनकी अपनी बरकत थी। अरे भाई ये चीज़ें आँखों से मिलती हैं यार, समझे, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो उनकी बरकत से आप भाइयों को फैज मिल रहा है, उन्हीं की बरकत से ये सब कुछ जो सिलसिला चल रहा है वही चला रहे हैं, मेरा काम नहीं। हजूर के वक़्त वो फरमाया करते थे मैं नहीं करता, ये सब बाबा जी कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि ये शायद कोई कसर नफसी है, अपने आप निमता करके बयान करते हैं। अब मैं सचमुच देखते हो वो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। वो कहते हैं वैसे वो नाम वाला सिलसिला बन गया है, कर वो रहे हैं, नाम खाम खा का बन रहा। तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि वही कर रहे हैं और वही उन्हीं के आधार पर सब चल, नहीं तो न मेरा ना कोई प्रचारक माफ करना, ना पेड, ना कोई प्रोपेगेंडा, नथिंग, कोई भी नहीं। साधारण काम जो आ जाते हैं उनको वो बरकत मिल जाती है, वही आगे लोगों को समझाते हैं भाई चीज़ मिल रही है। तो ये सारा काम किनका, उनकी कृपा से हो रहा है। अरे भाई आज उनकी याद में बैठे हो, आज सब मैंने अर्ज किया था कल शाम भी कि भाई सत के संग के पाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए हम समाजों में दाखिल हुए। फिर सारी समाजें जो महापुरुष है यही कहते जाओ किसी अनुभवी पुरुष जिन्होंने सत के संग को पाया उसकी सोबत करो। उन जो सब सोबत करते हो वो पहले दिन तुमको सत के संग की थोड़ी पूंजी दे देते हैं, कॉन्टेक्ट इन्हों के घाट से ऊपर लाकर। अब आगे सिलसिला अलव्य का शुरू होता है, इल्म लाइंदहा है। जो अनुभवी पुरुष जाते हैं वो भी कहते हैं वो लाइंदहा, अरे जिसको ये चीज़ी पूंजी मिल गई, हमारा फर्ज क्या है कि हम उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। कहते हैं जो जिंदगी है ना लाइफ, वो स्पीक्स मोर देन वर्ड्स, रानी नमूना बन जाओ, एग्जाम्पल इज बेटर देन पिसेट, एक नमूना बन जाओ सब बेड़ा पार हो जाए। पहलवानी की किताबें हजारों बन लो, पहलवानी का कोई दृश्य नहीं होगा, दूसरों पर भी हजार लेक्चर दो कुछ नहीं होगा, हाँ पहलवान के पास बैठ जाओ शौक भी बनेगा और पहलवान बन जाने पर सारा जान भागा आएगा तुम्हारा। तो वो तो जिस्मानी पहलवान कैसे बने, सुत को जिस्म के साथ जोड़ जोड़ कर। बुद्धिमान कैसे बने, सुत को ब्रेन के सेंटर से जोड़ जोड़ कर। अरे रूहानी पहलवान कैसे बने, सुत को महान सुर से जोड़ जोड़ कर। बस इसका जोड़ना जो है जो जुड़े हुए कर सकते हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती थी। गो इस खुशकिस्मती के साथ दुख भी बहुत, इसमें शक नहीं। लोग कहते हैं कि भाई ज्ञानी आदमी को कोई दुख नहीं होता, भाई होगा, मैं तो अपना जिक्र कर रहा हूँ, जब हजूर चोला छोड़ गए मैं तो जंगलों में चला गया था, ये प्रण किया था कि मैं दुनिया में नहीं आऊँगा, मगर फिर प्रेरण चलो वापस। तो मेरे याद करने का मतलब क्या है, एक दफ़ा गुरु सिद्धांत लिखी गई जब हजूर ने लिखवाई थी, उसमें मैंने जीवित मृत का एक मजमून दिया था, उसमें कई दो तीन चार सफ़े ऐसे आए कि जब महापुरुष चोला छोड़ जाए तो उनकी शिष्यों की क्या हालत होती। वहाँ पर गुरु अंगद साहब का जिक्र आया, वो कहते हैं त्रेग जीवन संसार ताके पाछे जीवन, और कई महात्माओं का ऐसे जिक्र होता रहा। तो एक जर्जरी महात्मा हुए हैं उसका जिक्र आया, तो उसका मुर्शिद चोला छोड़ गया, समझे। तो कहते हैं जब वो आए कब्र पर लेटे तो ये कहकर बे यार गार वुदन मुर्दन हजार उड़ा, यार गार के बगैर दुनिया में रहना से मरना बेहतर है, कब्र पर लेट गए और मर गए, खत्म हो गया। हजूर ने ये वाक्य दो तीन पढ़े के वास्ते कहने के वास्ते फिर पढ़ो, इसको तीन चार बार पढ़ाया, पांच बार पढ़ाया, फिर पढ़ो। ये वो बतलाना चाहते हैं कि आप बदकिस्मत इंसान, तुझको भी यही देखना नसीब होगा। खैर भाई उनकी कृपा है, हजूर फरमाया करते थे हुआ कि महाराज आप तो बाबा जी का स्वरूप हैं, बाबा जी आपके अंतर हैं सदा ही। तो फरमाने लगे अगर आज बाबा जी चलते फिरते आ जाएं मैं सारा सरमंस हुआ। तो मैंने कहा भाई आप तो आपके अंतर बाबा जी से आप कभी जुदा नहीं हुए, ये क्यों है। इरफान सिंह तुम्हें पता था भाई, वाकई वो बात है जिन्होंने वो चंद देखे वो आंखें देखी उनको चैन हो नहीं सकता, कैद भुगत रहे हैं। सच्ची बात, गुरु के पास जीना बाद जीना एक मौत से बदतर। वो खुशकिस्मत इंसान है जिसके हाथों में पैदल उसके हाथों में चले, पीछे वो ताकत नहीं छोड़ती इसमें शक नहीं। क्राइस्ट नेवर लीव, आई शैल नेवर लीव दी नॉट फॉर सेक दी टू दी एंड ऑफ दी वर्ल्ड, मतलब बाहर में दो लुत्फ हैं अंतर में एक है, समझे। वो साय में जाकर सब दुनिया भूल जाती थी, सब दुख भूल जाते थे, कई बार बड़े इरादे करके दिल में जाया करते थे वहां जाने बुत बन, सब भूल जाते। इसीलिए कहा माई गुरु चरण आत्मिक, बड़े भागों में प्राप्त, बड़े भागों से मिलते। अरे भाई, किसी जिंदा लिविंग मास्टर के चरणों में बैठना एक ग्रेट ब्लेसिंग है। जिनको मिले हैं खुशकिस्मत इंसान है भाई, जो सच्चा उनका दिन मयार बनाने की गर्ज की जो पूंजी उन्होंने दी है उसको बढ़ा लो, समझे। आप संगत यहाँ आ गई, मेरी कोई गर्ज नहीं थी, मैंने कभी किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, शुरू से आकर अपने आप आते हैं। मैं समझते हजूर भेजते हैं, फिर उनके थोड़ा बत्तर लटकने का सामान करना पड़ता, कुछ संगति लाती है संगत खा जाती है, माफ करना। मगर देखने की बात, आप आ जाए तो हजूर की बातें करनी है। हजूर कई बार, हजूर एक दफ़ा फरमाने लगे, अरे भाई मैं यहाँ ये जो लोग आते हैं मैं मेला नहीं बनाना चाहता। अरे भाई, ये मेला समझ कर मत आया करो, ये जो दिन आपको मिले घर से आज़ाद हुए हो उसी की याद में दिन रात गुजारो, उसी के लिए जियो। जो सिर्फ गुरु के लिए जीवन आधार जिसका बन जाए, अरे भाई उसको तीन लोगों में कोई डर नहीं। गुरु को सिर पर रखते चलते आज्ञा माए, कहे कबीर तिस दास को तीन लोग डरना। मगर याद रखो, फिर मैं अर्ज करूँ, जो अनुभवी पुरुष की जिंदगी में शिष्य को लुत्फ है पीछे नहीं पड़ता। उसकी कुछ बातें सुनाए, जो मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मोरा भी अच्छा लगेगा। मगर फिर उसके पाने बात सुनाने वाले भी अच्छा लगेगा, अरे भाई बातों से भी कब दिल पड़ता। जब ऊदो को भेजा भगवान किसी जी ने कि गोपियों को जरा तसल्ली दे जाओ, गए ज्ञान त्याग की बातें सुनाने लगे, सुना सुना कर आकर कहने लगे। गोपी कहने, ऐ भगवान, ऐ नारायण, जो तुम कहते हो बातें ठीक हैं, जो आंखें उस मुरली मनोहर को देखना चाहती हैं उसके लिए तेरे पास क्या है। अरे वे जिन्होंने उसकी झलक देखी है, आज किस भाई के पास ये ताकत वो झलक आज दिखा सके। हाँ, एक रास्ता बाकी रह गया, वो क्या, अंतर्मुख होने से। उनकी कृपा से अब भी जो अंतर्मुख होते हैं उनको स्वरूप आता है। आज जिसे वो 200 के करीबों को स्वरूप आया था। अरे बनाने की जरूरत नहीं, खुदा वही है जो खुदा पावर, जब नाम देता है साथ हो बैठता है, वो गाड पावर है, जिस्म नहीं है। जिस्म के अंदर जो पावर वो था वो कभी नहीं छोड़ती, वो अब भी तुम्हारे अंतर है। मैं ये देख रहा हूँ कि नेओं की संभाल वो कर रहे हैं। कई दफ़ा एक स्वरूप आता है, कई दो दो आते, और ऐसे वासों को स्वरूप आते जिन्होंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, ख्वाब ख्याल भी नहीं, जब फोटो बतलाए जाते हाँ ये। इसे साफ सबूत यह है कि उनकी बरकत से ये काम चल रहा है। मैं अब भी देख रहा हूँ कि वही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर कोई क्रेडिट, अगर किसी भाई बहन को कुछ फ़ायदा मिल रहा है, उनकी कृपा से है, मेरा नहीं। अगर थोड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ आप भाइयों को मुझ में नज़र आती है, तो उस्ताद पढ़ाने वाले का क्रेडिट है जिसने बख्शी है मेरे लिए। तो आप भाइयों का शुक्रिया, आपने कल शाम, आज सुबह, आज शाम, अरे भाई गुरु मैन बन जाओ बस। वर्ल्ड से, वर्ल्ड लफ्ज़ है इंग्लिश, WORLD, एल को मैं अपना बीच से निकाल दो, एल को वर्ल्ड बन जाओ, काम बेड़ा पार हो जाओ। ये वर्ल्ड कैसे बनोगे, जब मैं अपना रहेगा। मैं अपना कब हटोगे, जब गुरु भक्त बनोगे बस। उसके कई तरीके हैं साफ करने के, मैंने यही अर्थ किया था। वो स्कूल में दाखिल कर लेता है, बनाने के लिए भी डबल ड्यूटी, साथ अंतर में सत्य के संगी की पूंजी देकर उसमें लय करने के लिए भी। तो आज हम सब भाइयों और बहनों की खुशकिस्मती है कि उनकी याद में कल शाम, आज वो आज शाम गुजरा। तो आज के बाद हमने क्या करना होगा, क्या इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना। अरे भाई, एक सबक साथ लेते चले जाओ, उस महापुरुष की याद दिल में बसाओ। बैठत उठत सोवत वही याद, जैसे स्त्री को पति का ख्याल कहीं चली जाए वो भूलता, दिल से नहीं निकलता, शिष्य के अंतर गुरु का ख्याल उससे ना, जिसके अंदर वो ख्याल बनेगा, ऐ यू थिंक सो यू बिकम, हाँ गुरु गुरु हो जरूर, ये याद नहीं तो जैसे का करोगे, ये ध्यान बनने से भी नहीं बनता। अपने जैसों का तो ध्यान बन जाएगा हमारे लेवल का, जो हमारे लेवल से ऊंचे हैं उसका ध्यान बनता ही नहीं। तो आपसे मैं यही अर्ज करूँगा कि हजूर का प्यार दिल में अपने साथ लेते जाओ, और उनका प्यार दिल में बना रहा बेड़ा पार, दुनिया के प्यार की जगह उनका प्यार बसा। दोनों हाथ लड्डू रहे, यहाँ भी और अगली दुनिया में भी। तो आज कल शाम, आज सुबह, आज शाम हजूर की याद में जो वक्त गुजरा है, जो सबक उन्होंने दिया है, उसकी याद दहानी इसी बात में सच्चे मानों में हो सकती है कि आप जो कुछ उन्होंने फरमाया, जिस रास्ते उन्होंने चलाया, जो सबक उन्होंने दिया, उसको अमली तौर से उसका जामा पहन, बताने की जरूरत नहीं, जीवन बनाओ। पंडित गुरुदत्त है, उससे पूछा गया कि भाई तुम स्वामी जैन की जिंदगी लिखो, कह रहे हाँ मैं लिखूंगा। लिखने लगे, एक साल गुजरा, पूछा क्यों लिखा गया है, कहते नहीं अभी नहीं, मैं लिख रहा हूँ बड़ा जल्दी। दो साल गुजरे, फिर पूछा क्यों मैं स्वामी जी का जीवन लिखा है, कहला मैं आई एम राइटिंग वेरी हार्ड। फिर और साल, दो साल के पूछा क्यों भाई, कहाँ पहुँचा तुम्हारे जो हारे जिंदगी लिख रहे थे, कहले आई एम स्टिल वर्किंग वेरी हार्ड। कहे भाई वो कौन सा, तुमने स्वामी उम्र लिखनी है लाइफ जो अब तक खत्म नहीं हुई। कहते लिखना यही है कि अपने जीवन में उसको बना दूँ, मैं वैसे ही बन। अरे भाई तुम सावन का रूप बन जाओ, उसको हृदय में बसा लो, और वही बन जाना ही सबसे बड़ा उपदेश। जितना बनोगे उतनी दुनिया को खुशबू मिलेगी, वो तुम्हारे घट घट में बैठा है, उसका इजहार कर लो, उसी की बू तुमसे आए, जहाँ बैठो उसी के मंडल में चार्जिंग तुमको मिले। बात तो यही है। तो आज सत्संग खत्म है, इस वक्त जाते हुए मैंने यही अर्ज किया था, जाते हजूर की याद साथ लेते जाओ, ये सब बरकतों की माँ है, सब रसाइयों की रसाई है, समझे। और क्या कहूँ, किसी की याद में सवाए दिल भराए और क्या हो सकता। मैं तो एक ही कहूँगा कि गुरु की याद ही, आपको पता है हजूर हमारे फरमाया करते थे, एक था भीख का तालिब, भीख या भीख या भीख या भीख करता था, उसको लोगों ने पूछा, मुसलमान दुनिया थी, दो मिनट बाद ख़त्म करता, तो दुनिया पूछने लगी अरे भीख तू क्या कहता है, को मेरा खुदा है, मेरा रसूल है, मेरा ये है वो है। शरीयत का ज़माना था, पकड़ कर शरीयत वालों ने कत्ल का फतवा दे दिया, तो कत्ल के मुकदमे हमेशा बादशाह के पास जाए। तो जब वो गया तो आप देखे ना, बादशाहों के दिलों को भी थोड़ा रहा होता, देखा भी ये दीवाना, कह तुम्हारा खुदा कौन है, कह भीख तेरा रसूल कौन है, कहता है या भीख। आंखों में मस्ती देखी, दहल गया, तो इसको फांसी नहीं दो, मारो नहीं, क्या छोड़ दो इसको। कह रहे महाराज छोड़ते क्यों हो, क्या नहीं छोड़ दो। कह रहे भाई देख भीख, भीख तेरा खुदा है, तू तालब है उसका, तू उससे कहो आजकल बारिश नहीं हुई, बड़ी कैद चाली है, अपने भीख को कहो मुझे यहाँ बारिश हो जाए। कहना अच्छा मैं अपने भीख को कहूँ। अरे शिष्य को भी गुरु पर भरोसा होता है, वो किसी बच्चा भी नाचता पिता के जोर पर, कहा हाँ मैं अपने भीख को कह दूँगी। कह कब आओगे, कहते परसों आऊँगा। तो कहने लगे भाई भाग जाएगा नहीं है, क्या कोई की फिक्र ना करो। दूसरे दिन बारिश होगी, जल थल हो गए। जब तीसरे दिन आया, कह रहे भाई तेरे भीख का बड़ा शुक्रिया, उसने बारिश कर दी। भाई मैं यही अर्ज करूंगा कि हमारे सावन का शुक्रिया, जब कभी उनकी याद होती है, बादल छाए रहते हैं, छोटी छोटी बूंदा बांदी भी होती रहती है, ये उनके होने की निशानी। तो बारिश हो गई, तो बादशाह ने क्या कहते, किस गांव का पट्टा ले दिया, क्योंकि वहां संतों के यहाँ आना जाना लोगों का होता है। तो क्या कहने लगा, अरे भाई ये मैं ये पट्टा ले जाता नहीं। कहते क्यों, कहते मैं ये फना चीज के पट्टे अपने भीख के पास ले जाऊँ ना भाई। अरे उसके बाद अगर कोई चीज़ तुम उसके पास नजराना कर सकते हो, जान वाले का बस, जहाँ जान गई वहाँ दीन गया, वहाँ ईमान गया, समझे। जब उसके होकर रहोगे सारे बेड़े पार होंगे, थोड़े रसों। तो इस वक्त आप किसी समाज में हो, सब समाज मुबारक हैं, मेरी तरफ से आप सब भाइयों और बहनों का शुक्रिया है कि आपने कल शाम, आज सुबह, आज शाम वक्त दिया है। यहीं से मेरे हाथ जड़ना कबूल कर लो, जिन भाइयों ने जाना वो जाओ, जिन्होंने ठहरना बड़ी खुशी उठा।
पावन जो अपना जलवा दिखा कर चले गए, सावन पिया जो अपना जलवा दिखा कर चले गए, दिल में वो प्रेम बाण लगा कर चले गए, दिल में वो प्रेम बाण लगा कर चले गए। ये तेरा काम है कि तू हो उस पे गाम जन ये तेरा काम है के तू हो उस पे गाम जन सावन तो राह हक की बता कर चले गए सतगुर तो राह हक की बता कर चले गए हमको वो अपना जलवा दिखा कर चले गए दिल में वो प्रेम बाण लगा कर चले गए जिंदा वही है जिसका के सावन से दिल लगा जिंदा वही है जिसका के सावन से है दिल लगा यूं तो बहुत जहान में आकर चले गए यूं तो बहुत जहान में आकर चले गए शान दर जिनके थे नामो निशान बुलंद शान दर जिनके थे नामो निशान बुलंद नौबत वो चंद रोज बजा कर चले गए नौबत वो चंद रोज बजा कर चले गए जमाल चाहते हो पिया सावन से और क्या प्यारे जमाल चाहते हो पिया सावन से और क्या पर्दा दुई का दिल से उठाकर चले गए पर्दा दुई का दिल से उठाकर चले गए लम्हा तेरी जुदाई का सदियों से कम नहीं सदमा तेरी जुदाई का सदियों से कम नहीं जान ले के मुंह दिखा दे मुझे मरने का गम नहीं जान ले के रुख दिखा दे मुझे मरने का गम नहीं ले दे के फकत तू ही था हमारा सहारा ले दे के फकत तू ही था हमारा सहारा आ सामने सावन पिया हमको तो दम नहीं लम्हा तेरी जुदाई का सदियों से कम नहीं जान ले के मुंह दिखा दे मुझे मरने का गम नहीं अब तो खुदाया इश्क की कश्ती को पार कर अब तो खुदाया इश्क की कश्ती को पार कर लंगर उठा दे अब तो मेरे दम में दम नहीं लम्हा तेरी जुदाई का सदियों से कम नहीं जान ले के रुख दिखा मुझे मरने का गम नहीं दे प्रेम की तू भीख हमें दे प्रेम की तू भीख हमें अपनी सावन पिया इसके सिवा कुछ चाहता तेरी कसम नहीं इसके सिवा कुछ चाहता, तेरी कसम नहीं लम्हा तेरी जुदाई का, सदियों से कम नहीं जान लेके रुख दिखा मुझे मरने का गम नहीं।
जाग मुसाफिर देख जरा वो कूच की नौबत बाज रही, सोवत सोवत बीत गई सब रात तुझे प्रभात भई, सोवत सोवत बीत गई सब रात तुझे पर भात भई, सब संग के साथ ही तो लाद गए तेरे नैन नींद विराज रही, सब साथ के संगी तो लाद गए तेरे नैन नींद विराज रही, जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही, कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन खात तैयार खड़ा, कोई आज गया कोई कल गया कोई जावन काज तैयार खड़ा, कायम कोई मुकाम नहीं चिरकाल से ये ही रिवाज रही, कायम कोई मुकाम नहीं चिरकाल से ये ही रिवाज रही, हाथ खाली आए थे और हाथ खाली चल दिए, हाथ खाली आए थे और हाथ खाली चल दिए, ये चमन यूं ही रहा और लाखों माली चल दिए, ये चमन यूं ही रहा और लाखों माली चल दिए, जिंदगी का राज पूछो पिया सावन शाह से, जिंदगी का राज पूछो पिया सावन शाह से, अपने आने की कहानी बस सुनाई चल दिए, अपने आने की कहानी बस सुनाई चल दिए, जवानी में अदों के वास्ते सामान पैदा कर, जवानी में अदम के वास्ते सामान पैदा कर, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है, हमारी जिंदगानी एक मट्टी का खिलौना है, हमारी जिंदगानी एक मट्टी का खिलौना है, अजल की एक ठोकर से जो चकना चूर होता है। जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचा आना को, कह रहा है आसमां ये सब समा कुछ भी नहीं, पीस दूंगा एक गर्दिश मैं जहां कुछ भी नहीं, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीनों आसमां, चुप पड़े हैं कब्र में अब हूं नहा कुछ भी नहीं, चुप पड़े हैं कब्र में अब हूं नहा कुछ भी नहीं, जिस जगह था जम का जलसा और खुसरो का महल, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं, कत्ताल जहां माशूक जो थे सूने हैं पड़े मरकद उनके, कत्ताल जहां माशूक जो थे सूने हैं पड़े मरकद उनके, जहां मरने वाले लाखों थे वहां रोने वाला कोई नहीं, हर एक नुमाइश को देखा झपकी जो पलक तो वहां कुछ भी न था, हर एक नुमाइश को देखा झपकी जो पलक तो वहां कुछ भी ना था, हस्ती है हबाबे दैरो फना दुनिया में किसी का कोई नहीं, जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही। इस देश में चोर चकोर घने निज माल की राखो संभाल सदा। इस देश में चोर चकोर घने है निज माल की राखो संभाल सदा। बहुते होशियार लुटाए गए नहीं किसी की साबत लाज रही। बहुते होशियार लुटाए गए नहीं किसी की साबत लाज रही। जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही। दिल का लगाना इस दुनिया से पूरा धोखा खाना है। दिल का लगाना इस दुनिया से पूरा धोखा खाना है। आए थे क्यों क्या करके चले यही रोना और पछताना है। आए थे क्यों क्या करके चले यही रोना और पछताना है। शाद रहे ना शाद रहे आबाद रहे बर्बाद रहे। शाद रहे ना शाद रहे आबाद रहे बर्बाद रहे। शादियों गम दो दिन के हैं आखिर तो यहां से जाना है। शादियों गम दो दिन के हैं आखिर तो यहां से जाना है। बांध कमर ले राह मुसाफिर घर ना समझ इस मंजिल को। बांध कमर ले राह मुसाफिर घर ना समझ इस मंजिल को। और भी कुछ है आने वाले जिनको यहाँ ठहराना है। और भी कुछ है आने वाले जिनको यहाँ ठहराना है। जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही। अब तो तज आलस को मन से कर संग समान तैयार सभी। अब तो तज आलस को मन से कर संग समान तैयार सभी। ब्रह्मानंद न देर लगाओ जरा बिजली सिर ऊपर गाज रही। जाग मुसाफिर देख जरा वो तो कूच की नौबत बाज रही।
बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा। आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा। हाँ बैठे हैं तेरी याद का लेकर के साथ। मेरी किस्मत का सितारा, दिन रात जला करते हैं फुरकत में तुम्हारी, फुरकत में तुम्हारी, हर सांस धुआं बन के निकलता है हमारा, आ जाओगे जमके मेरी किस्मत का सितारा, हाँ बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओगे जमके मेरी किस्मत का सितारा, चुपचाप सहे जाते हैं हम दर्द की चोटें, हम दर्द की चोटें ले ले के जिए जाते हैं हम, नाम तुम्हारा, आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा, हाँ बैठे हैं तेरी याद का लेकर के सहारा, आ जाओ के चमके मेरी किस्मत का सितारा।